ओम शांति, ओम शांति। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो महाभारत में तो दिखाते हैं कौरव और यादव विनाश काले विपरीत बुद्धि थे तो उनका विनाश हुआ, और पांडव विनाश काले प्रीत बुद्धि थे तो वे विजयी हुए। लेकिन आज बाबा ने कहा है कि पांडवों में भी, ब्राह्मण संसार में भी कई बच्चे हैं जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि तो है लेकिन कई विपरीत बुद्धि भी है। अब विपरीत बुद्धि कैसे है वो आज बाबा ने बताया। तो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ब्राह्मण परिवार में भी है। तो प्रीत बुद्धि की निशानी क्या होगी और विपरीत बुद्धि वाले क्या करते हैं वो आज बाबा ने बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है, और हर एक अपने आप से लगाए उस हिसाब से मैं सचमुच प्रीत बुद्धि हूँ या कुछ कुछ विपरीत बुद्धि भी हूँ। तो आज बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण परिवार में प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि भी है। अब जो विपरीत बुद्धि है और ब्राह्मण भी कहलाते हैं, बाबा भी कहते हैं, परंतु कैसे है वो विपरीत बुद्धि और क्या उनकी गति होती है फिर बाबा वो भी बताते हैं। तो बहुत कुछ है आज की मुरली में, और आज 12 मई 2026 है, और आज विशेष हमारे अति स्नेही अति प्रिय वरिष्ठ भ्राता जगदीश भाई का भी स्मरण दिवस है, स्मृति दिवस है। आज से 25 साल पहले 2001 में आपने अपना यह पुराना देह त्याग किया था। उनकी तो महिमा बाबा के समान अपरंपार है। वे वरिष्ठ भाई तो थे ही, लेकिन यज्ञ का सारा लिटरेचर, किताबें जो भी हमारे यज्ञ की है वो सब उसने लिखी थी। बाबा उनको कहते थे इनकी बुद्धि 7 फीट लंबी है, इतने इंटेलिजेंट थे, क्या नहीं उसने पढ़ाई की होगी, कितने सारे शास्त्र पढ़े थे। और बाबा के बच्चे, बाबा का बच्चा बना और कैसे धक से सब कुछ छोड़ करके कैसे समर्पित भी हो गए। तो जैसे दिल्ली में सेवा केंद्र खुले तो सबसे पहला स्टूडेंट हमारे जगदीश भाई थे। बहुत उसकी लंबी कहानी है, तो आज उसका दिवस है। वैसे भोग तो परसों गुरुवार को लगाएंगे, आज पांडव भवन दिल्ली में ORC में भी उनका बड़ा प्रोग्राम है, और नीचे शांतिवन में भी बड़ा प्रोग्राम रखा है जिसमें हमारे वरिष्ठ भाई और वो उनका संस्मरण सुनाएंगे और भोग रहेगा, और यहाँ तो परसों ही लगेगा। बाकी हमारे सतीश भाई बैठे हैं, सतीश भाई और हल्दर भाई गीत भी गाएंगे उनके प्रति आज मुरली के बाद। आज 12/5/2026 है, मुरली की हेडिंग है मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत समीप है। अब उस समय जब मुरली चली होगी तो इतना नहीं लगता होगा, अभी तो बिल्कुल ही लगता है कि कितना समीप है विनाश का समय। इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। किसी भी देहधारी से प्रीत रखी तो विनश्यंती। केवल एक बाप से सच्ची प्रीत है तो फिर विजयंती। इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? हरेक अपने आप से लगाए। जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? तो उसने छह निशानियां बताई है, जो आज की मुरली का सार है, उत्तर है। पहली निशानी, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वो आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। आशिक माशुक एक दो के भी बन जाते हैं, उसके बिना उसको चैन नहीं, उसके बिना उसको चैन नहीं। साथ में ही खाएंगे, साथ में ही रहेंगे, साथ में सब साथ में। हाँ, बाबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, हमारी दादियों को भी पसंद नहीं थी। क्यों साथ में रहना है, साथ में ही खाना है, साथ में ही। तो बाबा कहते हैं उनको एक दो के आशिक माशुक नहीं होंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना, वही विजयी होंगे। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहेंगे, सच्चाई होगी उनमें, बाबा से कुछ भी छिपाएंगे नहीं, कुछ भी। सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाबा को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। ये प्रीत बुद्धि बच्चों की निशानियां हैं मुरली में। ये सब बाबा ने आज कहा है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा के लिए जो प्यार है वो कभी दिल से निकलेगा नहीं, न कभी हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं। ये गीत जैसे हमारी प्रतिज्ञा है बाबा के लिए। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। है क्या किसी को संशय, या समझते कि नहीं नहीं विनाश तो होगा ही नहीं? नहीं, सबको निश्चय है विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजयी बनेंगे, वही विजय पाएंगे, अर्थात विजय पाएंगे अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है। सब कहेंगे हम विश्व के मालिक है, जैसे यहाँ कहते हैं हम सब भारत के मालिक है, यही कहते हैं ना, भारतवासी है। तो सब तो विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में तो बहुत फर्क है ना। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा समाप्त होगा। तुम लिख सकते हो, बाबा कहते लिखो ये पर्चों में, किताबों में, यहाँ लिखो, चित्रों के आगे भी लिखो, क्या कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, ये लिखो। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उनका विनाश होगा, ये भगवान भी कहते हैं, और जो प्रीत बुद्धि वाले हैं उनकी विजय होगी, ये भगवान कहते हैं। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत कोई की भी नहीं है, भगवान से सच्ची प्रीत कोई की भी नहीं है। अब ये भी कितना बड़ा वाक्य है, बहुत बड़ी ये चैलेंज है कि किसी की भी प्रीत बुद्धि नहीं है, क्योंकि भगवान को तो जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, अब तुम्हारी ही प्रीत है, क्योंकि तुम जानते हो भगवान को, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। अब श्री कृष्ण से तो प्रीत है, लेकिन शिव बाबा से जितनी प्रीत चाहिए उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं है कि भगवान कौन है। तो अलग अलग लिखो दोनों की महिमा तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। ये तो जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता है या पानी की नदियां, ये भी बाबा ने प्रश्नावली बनाई थी। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, कौन है पतित पावनी? ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए किसको? आज बाबा ने कहा, जो गीता पाठशाला वाले हैं दुनिया में, जो गीता पाठशाला वाले गीता का अध्ययन करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, कई गीता पाठशालाएं हैं भारत में जहाँ गीता का ही पठन पाठन होता है, तो बाबा कहते हैं उनको ये निमंत्रण देना चाहिए और एग्जीबिशंस में सुनाना चाहिए। तो जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, वो तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं। गीता सुनाते हैं फिर यही कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा, बाबा कहते वही सबसे पहले भूले हुए हैं, और फिर सभी को बुलाते भी रहते, खुद भी भूले हुए हैं और दूसरों को भी जैसे भूलवाते रहते हैं, और वो उनको भी समझाते कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर के जज करो कि कौन है गीता का भगवान, फिर जो समझ में आए सो करना, उनको समझाओ दोनों में क्या अंतर है, फिर उनको जो चाहिए सो करे। हाँ, बाबा कहते जो समझ में आए सो करना, समझाना तो है हमें। तो मनुष्य भी समझे, ये गीता वालों को बुलाते हैं, गीता वालों को बुलाते, नहीं तो कहेंगे ये तो किसको मानते ही नहीं है, पर गीता वालों को बुलाते हैं क्योंकि हम भी गीता को मानते हैं। शायद इनका गीता पर ही प्रचार है, अगर गीता जो इस पाठशाला उनको बुलाएंगे तो लोगों को आएगा बुद्धि में कि ये गीता का ही प्रचार करते हैं। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है, गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं, महिमा वास्तव में जो भगवान ने ज्ञान दिया उसकी महिमा है। तो बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य तो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग, कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये भी सत्य नहीं है। अब गीता में तो लिखा है सर्वव्यापी, एक तरफ सर्वव्यापी भी लिखा है, फिर दूसरी तरफ ये भी लिखा है सब पहाड़ों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ, सब नदियों में मैं गंगा नदी, मतलब अलग भी किया अपने आप को, सबसे ऊंचा भी रखा है। तो सबसे ऊंचा भी है फिर सब में व्यापक भी है। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे, क्योंकि सत्य नहीं सुनाते तो विनाश को प्राप्त होंगे, और कल्प कल्प होते भी हैं विनाश को प्राप्त। तो तुमको पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाप कहते हैं यूरोप वासी यादवों की तो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, कर रहे हैं ना अच्छी रीति तैयारियां विनाश। तो बाबा कहते हैं विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। क्या नहीं समझ सकते कि हम ये अपने विनाश के लिए ही तैयारियां कर रहे हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, ये भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल, बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, बाबा के तो बने हैं परंतु अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं, जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। सच्चे प्रीत बुद्धि तो वही होंगे ना जो सर्विसेबल है, और फिर वही ऊंच पद पाएंगे। उनका ही बाप, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, प्रीत बुद्धि है तो बाबा भी उनको ही प्यार करते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं, कई तो ये भी समझते नहीं है, बाबा के बच्चे ये भी नहीं समझते हैं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, ये समझते ही नहीं है। चाहे सगे बने या सौतेले बने, मातेले बने या सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा, सीधी बात। तो कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, अब राधे फिर कहां गई? बाबा को ये भी लगता है कि कृष्ण की तो मुरली मशहूर है, पर बिचारी राधे का क्या? तो राधे फिर कहां गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, सितार दे दिया है, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को तो जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी देवताओं के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं। ना उस समय जब अंग्रेज थे तो बहुत सारे अंग्रेजों के जो स्टैचूस हैं वो मूर्तियां जैसे बाहर लगाते थे गार्डन में या तिवाटी पर, अंग्रेजों के ही थे स्टैचूस। तो बाबा कहते हैं बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, राजाओं के भी जो स्टैचू जो बाहर लगा देते थे, जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते थे, कोई छत तो होती नहीं थी तो पक्षी भी उनके वो ये मूर्ति पर बैठ जाते थे, जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को तो कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं मंदिरों के अंदर, उनको महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। लक्ष्मी नारायण को किंग नहीं कहेंगे, महाराजा महारानी, बाकी किंग शब्द तो अंग्रेजी शब्द है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो, बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। अगर धारणा नहीं होती इसका मतलब बाबा को याद भी नहीं करते। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है प्रीत। ऐसी ऐसी बच्चियां है जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती है जितना एक दो को प्यार करती है। कभी उनको अकेला नहीं देखेंगे, हमेशा वो सखी उसके साथ ही होगी। तो शिव बाबा को भी इतना प्यार नहीं करते, वो एक दो को इतना प्यार करते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग तो मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशिक बन जाना है। एक दो में आशिक माशिक बन जाना और बाबा से प्रीत लगाना कितना अंतर है। या एक दो में आशिक माशिक बन जाना है फिर मेरे को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब आपस में आशिक माशिक है, कुछ भी बात होगी उसको जरूर सुनाएंगे, उससे छिपाएंगे कुछ नहीं, एक दो को सब सुनाएंगे। और किसको न भी सुनाए, बाबा को भी नहीं सुनाएंगे पर उसको सुनाएंगे। तो आशिक माशिक बन जाना है, क्या करना है? बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशिक बन जाना है फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है ना, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती नहीं है, आपस में एक दो के आशिक माशिक हो जाते हैं, बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, फिर ग्लानी करने लगते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। बाबा ने कुछ कहा, किसी का नाम लिया तो बस वो इतना वो बुरा तो मान लेता है लेकिन गालियां देने लगता है तो चलो ब्रह्मा बाबा को दे दे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को देना माना शिव बाबा को देना। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा, ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से भी पढ़ न सके, ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही शिव बाबा को सुनाना है, तो ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो, बाबा से पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को तो मानते ही नहीं है, ब्रह्मा बाबा से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है, यही कहते हैं। समझते हैं ये भी तो पुरुषार्थी है ना, ब्रह्मा भी तो पुरुषार्थी है समझते हैं। अब पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। अब किसको फॉलो करेंगे, शिव बाबा तो निराकार है, पर मम्मा बाबा ने क्या किया उनको ही फॉलो करेंगे ना। कोई तो समझाने से तो समझ जाते हैं, और कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है, सर्विसेबल बनते ही नहीं है। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकल पड़े, अभी दूसरे देखो विपरीत बुद्धि बहुत आजकल निकल पड़े हैं, जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आता है, मेरे में शिव बाबा आता है। अब इसमें बड़ी संभाल चाहिए, मेरे में शिव बाबा नहीं आता है, मेरे में माया आती है, अगर कोई कहे शिव बाबा आता है। अब इसमें बड़ी संभाल चाहिए, माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे यज्ञ में, तो बहुत बाबा ने अनुभव कराए ना, कई संदेशियों में वो ध्यान में जाती थी और श्री नारायण आते थे तो कृष्ण आते थे, तो जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वो भी आज नहीं है, वो भी कैसे भागंती हो गए, आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है ये सब माया है, सीधी बात है, सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे। योग तो सीधा चाहिए, लेकिन शिव बाबा भी किसके थ्रू सुनाएंगे, ब्रह्मा बाबा के थ्रू। अब ब्रह्मा बाबा से भी योग नहीं है, केवल शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा को कुछ मानते ही नहीं है, तो बाबा कहते तो भी मेरे पास तुम्हारा नहीं पहुंचेगा। तो जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। तो बाप कहते हैं तो माँ में कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही तो मैं समझाता हूँ ना कि माँ में कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है, तो त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं। कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। पहले जो हमारा ये श्री कृष्ण का चित्र था ना, जिसमें नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग हथेली भी है, तो उस पर पहले लिखत होती थी कि श्री कृष्ण ने कैसे 84 जन्म लिए, 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म, तो ये श्री कृष्ण की आत्मा के जन्म है। तो लोग पढ़ते थे तो पढ़ करके बहुत गुस्से होते थे, ऐसे क्या लिख दिया श्री कृष्ण के इतने जन्म, श्री कृष्ण तो जन्म में मरण में आता ही नहीं है। तो फिर बाबा ने ये हटवा दिया, वो लिखत हटवा दिया, अभी जो श्री कृष्ण के चित्र है उनमें वो लिखत नहीं है, तो उस समय तो लिखत थी। तो बाबा कहते हैं कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, जब वो पढ़ते हैं श्री कृष्ण के चित्र पर, चित्र फाड़ भी डालते हैं कि ये आपका चित्र ही गलत है, श्री कृष्ण के 84 जन्म नहीं हो सकते। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, शिव बाबा ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो, बांधेलियों को भी रड़िया नहीं मारनी है। बाबा मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ, ये रड़िया नहीं मारनी है, बांधेलियों को भी रड़िया नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है, बहुत याद करती है बाबा को, लेकिन बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ ऐसे नहीं, बाबा कहते रड़िया मारो, याद में खो जाओ, तो देखो कैसे धीरे धीरे अपने आप बंधन कटेंगे। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है, तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। बाकी क्या है, बाबा कहते हैं वो सब है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र उसको कहते हैं, बहुत अपने अपने विचार। पर ज्ञान जिसको बाबा कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, वो तो भगवान ही देते हैं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। अब इसमें डरने की क्या बात है, अगर ये बातें लिखते हैं तो इसमें डरने की तो क्या बात ही नहीं है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चों को औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में तो नहीं है, अभी तो राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। सतयुग में तो एक ही राज्य था, ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबर वार है, जिनकी बुद्धि में धारण होती है। जिनको धारणा नहीं होती उनका क्या हाल होगा, जिनको धारणा नहीं होती उनको विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, ये अक्षर कम है क्या, कितने कड़े अक्षर है। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत बुद्धि नहीं रखते हो, हाँ तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। शिव बाबा से प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है, धदीची ऋषि मिसल सेवा में भी हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, अब तूफान बहुत आए, बाबा की याद है नहीं, अंदर ही अंदर संघर्ष चलता रहता है, शक्ति है नहीं, तो वो क्या कहते हैं, इससे तो हम लौकिक के पास ही चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहां तो क्या मिलेगा। तो अब दुनिया में चले गए तो वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है, दुनिया में चकाचौन तो बहुत है, तो वो आकर्षित करता है और वहां फिर चले जाएं यही सोचते हैं। वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है, जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर न सके। थोड़ा भी फैशन दिखाते हैं, थोड़ा भी कुछ नटखटपना है, बहुत कुछ कई चीजें दिखाते हैं, शो करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ पुरुषार्थ से ही ऊंच पद भी पा सकते हैं, अगर सचमुच वो सच्चा पुरुषार्थ करे तो ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए, बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं सुबह को उठकर अगर बाबा की याद में नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, कई सुबह से ना कोई बात नहीं, मैं जाग तो गया हूँ, लेटा हूँ कोई बात नहीं, बाबा को लेटे लेटे भी याद कर रहा हूँ अमृत वेला। तो बाबा कहते कभी भी झुटका आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, फिर विचार सागर मंथन भी होता है, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हाँ ये पुरुषार्थ बाबा कहते ही बाकी थोड़े दिन है पुरुषार्थ करने के। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से, ये बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है, हाँ दिन में भी वो खुशी रहेगी अगर सुबह चिंतन चलता है तो। अगर खुशी नहीं रहती है तो क्या समझना चाहिए, अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है, ये कसौटी है, हाँ ये मीटर है कि अगर खुशी नहीं माना बाप से प्रीत बुद्धि नहीं। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी भी बैठती है, लेकिन किनको बैठती है ग्रहचारी, सबको थोड़ी ग्रहचारी बैठती है, उनको किनको ग्रहचारी बैठती है, इस पढ़ाई में ग्रहचारी उनको बैठती है जो बाप को भूलते हैं। क्यों ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है, इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है, इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है, मनसा वाचा कर्मणा। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे, बाबा की सर्विस कब करेंगे और दुनियावी बातों में लग गए तो। कल कल करते मर जाएंगे, अब ये बाबा श्राप नहीं दे रहे हैं, हाँ कल कल करते मर जाएंगे, कई समय से बाबा ये श्राप दे रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है, तो वास्तविकता से तो हम भाग नहीं सकते ना। कल कल करते मर जाएंगे, बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए, इसलिए कहते हैं ना जो कल करना सो आज कर, आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। तो बाप आए ही हैं, कल कल करते मर जाएंगे, बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए, यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा, जब लड़ाई लगती है कहाँ भी तो कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। अब वहाँ तो लड़ाई आदि की बात ही नहीं है, बाबा जब यहाँ की बात सुनाएंगे तो तुरंत बाबा सत्यु की बातें करते, ताकि ऐसे में यहाँ की बात सुन के दुखी हो जाए, वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं, ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं, इतनी जनसंख्या है, बाबा कहते हैं यहाँ थोड़ी सत्युग में होगी ये जनसंख्या, इतनी सब खत्म हो जाएंगे। निधन के बाबा देखो और कड़ी बात क्या सुनाते हैं, सब खत्म होने हैं, निधन के ऐसे मरेंगे, निधन के ऐसे मरेंगे, क्योंकि धनी को याद किया नहीं तो ऐसे ही मरेंगे, पर धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे, जो धनी के होंगे धनी को याद करेंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे, निधन के ऐसे ही मरेंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, है ना, लोग पूछते हैं आपको धन कहाँ से आता है, तो यही जवाब देना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं, है ना, दुनिया में तो कई संस्थाएं भीख मांगते हैं, डोनेशन मांगती है, यहाँ पर कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखा है, कंट्रीब्यूशन बॉक्स जरूर होता है, विदेशों में भी बाबा के सेंटर्स पर है कंट्रीब्यूशन बॉक्स या बाबाज बॉक्स। तो बाबा के प्रति हम जो देते हैं वो बाबा को देते हैं, कोई मनुष्य आत्मा को डोनेट नहीं करते। तो बाबा कहते हैं हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। बाबा के इतने बच्चे हैं। एक बार बाबा से पूछा गया, बाबा ये आपकी संस्था कैसे चलती है? तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, मेरे इतने बच्चे हैं, तो क्या मेरे इतने बच्चे बाबा का यज्ञ नहीं चला सकते? आज एक लौकिक घर में जाओ जिसके चार पांच बेटे हो और सब कमाते हो, सब साथ में रहते हो, उस पिता से पूछेंगे क्या कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? वो तो कहेगा ना, हमारे ये पांच बच्चे सब कमाते हैं तो घर का खर्चा कैसे चलता है, ये पूछने की बात थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं हम अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहने इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं, तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। दुनिया वाले करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, कितनी सुंदर बात है। दुनिया वाले करोड़ इकट्ठा कर अपना ही विनाश करते हैं और हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को याद करना है, दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा, बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। ये ज्ञान गुण शक्तियां सब हमारी संपत्ति है ना, तो सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं, ममता नहीं बनते हैं। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। वरदाता विधाता है ना, तो कुछ न कुछ हर आत्मा को दान व वरदान देने वाले होते हैं। स्लोगन, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। आपके मुख से जो भी शब्द निकले वो दूसरों को प्राप्ति कराने वाले हो, वो वरदानी बोल हो। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। सत वचन माना वरदानी वचन, वही सत वचन है। यह व्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो, कितना भी कोई हिलावे पर आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है? सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। परिस्थिति अगर वार कर लिया माना परिस्थिति पावरफुल हो गई, तो सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर क्या करते हैं? आप लोग एक तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो और जो हठ योगी होते हैं वो हट कर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। वो एक टांग पर खड़े होते हैं ना, देखे है कई, एक टांग पर खड़े, फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एक रस स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। वो तो हठ योग से अपने आप को कष्ट देते, हमने देखा है। या माउंट आबू में भी एक कोई सन्यासी आया था, वो समय पहले पुराने है, वो जानते होंगे। वहां जहाँ पेड़ है ना नक्की लेक के पास, जहाँ से जाते म्यूजियम की तरफ वो मार्केट है, वहां पेड़ के नीचे एक खड़ा था एक टांग पर। कितने किसे देखा, याद है किसी को? हाँ, तो वो एक टांग पर, अभी जो टांग पर खड़ा था वो एक टांग, वो इतनी दुबली पतली, ऐसी पतली लकड़ी, लकड़ी की तरह पतली, और जो टांग टेढ़ी की थी दूसरे टांग पर रखी वो इतनी मोटी हो गई, इतनी सूजन हो गई। पर खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, सब लोग आकर देखते थे कैसे ये खड़ा है, वो इतनी पतली लकड़ी, लकड़ी जैसी टांग। तो कितना कष्ट हुआ होगा ना, ऐसे थोड़ी कोई हठ योग इस प्रकार से कोई कर पाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है एक रस स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ भाई आइए, किसको गीत गाना है? हमारे जगदीश भाई के प्रति विशेष गीत गाएंगे। कहाँ हैं? हाँ नहीं आए हैं।